ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। बोलिए। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। माताजी कोई बोलेंगे? एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ये श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय से है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 2। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों में इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम् काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। इस चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने सबसे पहले तो सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को यह ज्ञान दिया। विवस्वान मनवे प्राह और मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। और फिर वो ये दूसरा श्लोक बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, कि इस तरह से हे अर्जुन, ये मेरे बारे में जो दिव्य ज्ञान है, ये भगवत गीता है, ये ऐसे परंपरा में चलते आई है, इस तरह से ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यदि मेरे बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे भी ऐसे ही परंपरा से जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो सीधे उनके पास पहुंच सके। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान काल क्रम में थोड़ा बहुत लुप्त हो सा हो गया था, क्योंकि राज ऋषियों की परंपरा कभी कभी टूट जाती है। परंतु ऐसे समझाया जाता है कि दो तरह की परंपराएं हैं। एक है राज ऋषियों की परंपरा, जिनका उल्लेख यहां पे श्री कृष्ण कर रहे हैं। उस जमाने में राजा वो संत हुआ करते थे, बड़े ऋषि हुआ करते थे, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हुआ करते थे अधिकतर, जैसे स्वयं मनु हैं या राजा इक्ष्वाकु हैं। और राजा इक्ष्वाकु के संप्रदाय में सूर्यवंश में कितने सारे महान महान राजा हुए। अंततः श्री राम भी इसी वंश में प्रकट हुए। उधर चंद्रवंश में भी कितने सारे शुद्ध भक्त उत्पन्न हुए। तो ऐसे राज ऋषियों की परंपरा में ये भगवान के बारे में ज्ञान चलते आया है। परंतु इसके अलावा एक और भी परंपरा है, और वो है साधुओं की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, जो राजा नहीं है उनकी परंपरा। और वो परंपरा कभी टूटती नहीं है। इसलिए ये ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, कभी भी लुप्त नहीं होता है। राज ऋषियों की परंपरा में ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और साथ साथ ऋषियों की परंपरा में जो ज्ञान चलती आ रही थी वो तो ज्यादा अन्य भक्तों को पता नहीं था। थोड़े ही लोग थे जो अपने अपने जगह में अपने आश्रमों में उधर इस ज्ञान को बनाए रखे थे। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि राज ऋषियों की परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को और भी फैलाया जाए। दूसरे शब्दों में हम इससे समझ सकते हैं कि राजाओं को कृष्ण भक्त होना कितना आवश्यक है। जो समाज के नेता हैं उनको भगवान का भक्त होना कितना जरूरी है, क्योंकि जब ऐसे राजा या नेता कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो सारे समाज में कृष्ण भक्ति फैला पाएंगे, और सारे प्रजा है वो भी इस परंपरा से जुड़ सकती है। तो ये है प्रामाणिक तरीका, पद्धति, दिव्य ज्ञान या भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परंतु दुर्भाग्यवश आधुनिक काल में ऐसे अक्सर देखा जाता है कि लोग ऐसे परंपरा में विश्वास नहीं करते हैं, न ही उनको परंपरा के बारे में कुछ ज्ञान है, तो वो अपने तरह से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। परंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार 6 अंधे लोग थे जो मित्र थे आपस में, और उन्होंने सुना कि हाथी नाम का एक पशु है जो बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी जाके जान लेते हैं कि ये हाथी कैसा होता है। तो ये 6 अंधे लोग उस हाथी के पास गए। पहले अंधे आदमी ने हाथी के सूंड को पकड़ लिया और कहा, हाँ, हाथी ये तो सांप की तरह है। फिर दूसरे आदमी ने जाके हाथी के पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ को अपने हाथों से स्पर्श करके अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा था कि हाथी कैसे है। उसने कहा, हाँ, मैं जान गया हूं, हाथी एक रस्सी के समान है। तीसरा जो अंधा आदमी था वो आया, हाथी के पैर को पकड़ा उसने और ऐसे पैर को हाथ लगाते लगाते कहा, हाँ, नहीं नहीं तुम लोग दोनों गलत हो, मैं समझ गया हूं, हाथी कैसा है, एक पेड़ के समान है। फिर चौथा आदमी था वो हाथी के ऊपर चढ़ गया था, तो चढ़ के वो ऐसे अपने हाथ लगा रहा था, उसको हाथी के कान पकड़ लिए उसने और कहा, नहीं नहीं ये हाथी जो है ये बड़े पंखे के समान है, हवा देता है। और एक अंधा आदमी था वो हाथी के नीचे खड़ा था, हाथी के पेट के ऊपर उसने हाथ लगाया, उधर पर हाथ लगाया और कहा, अरे नहीं नहीं तुम लोग सब गलत हो, मैं जानता हूं हाथी कैसा होता है, हाथी जो है एक ढोलक के समान होता है। तो ऐसे सारे अंधे लोग जो थे उन्होंने अपने अपने तरह से इस हाथी को जानने का प्रयास किया, परंतु ये गलत नहीं थे लेकिन इनका ज्ञान अपूर्ण था। हरेक ये जितने भी अंधे लोग थे इन्होंने हाथी का ही स्पर्श किया और उन्होंने हाथी के अलावा किसी और चीज का वर्णन नहीं किया, परंतु क्योंकि उनकी दृष्टि सही नहीं थी तो संपूर्ण हाथी कैसा है उनको समझ में नहीं आया। अपने सीमित अनुभव, अपने सीमित इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाली समझ है, उसके आधार पर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे जो अपूर्ण था। यदि वो ऐसा कहते कि हाथी का पैर ये पेड़ के समान है, परंतु हाथी बहुत बड़ा है, तो वो सही होता है। लेकिन उस आदमी ने केवल कहा कि नहीं नहीं, हाथी तो पेड़ के तरह ही है। दूसरे ने कहा हाथी तो सांप की तरह ही है। तो ऐसे उन्होंने हाथी को समझने में गलती कर ली। ठीक उसी तरह से परम सत्य भगवान को समझने के लिए लोग अपने अपूर्ण इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और ऐसे भौतिक ज्ञान से, अपने मानसिक चिंतन से वो जानना चाहते हैं कि परम सत्य कैसा है, ये सृष्टि कैसी है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर वो अपने मनमाने ढंग से आविष्कार करके, संशोधन करके निकालना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक छोटी कहानी बताई, ऐसे अनेक वो दृष्टांत बताया करते थे कि एक बार एक बहुत बड़ा जमींदार था जो बहुत धनी था, और क्योंकि वो धनी आदमी था तो उसके पास कई ऐसे लोग आया करते थे उनकी चापलूसी करने के लिए, जैसे यहां की भाषा में बोलते मस्का लगाने के लिए, ताकि उनको भी थोड़ा कुछ धन मिल जाए, थोड़ा उनको लाभ मिल जाए। तो जो भी वो कहते थे वो हां हां मिलाते थे। तो एक बार उस धनी जमींदार ने कहा, और उस दिन अमावस्या की रात्रि थी, सूर्यास्त हो गया था और रात का समय था, तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे सूरज देखना है, सूरज दिखाओ। तो उनके पास जो सब लोग थे उन्होंने कहा, आपस में मन के अंदर तो सोचा कि ये कैसे संभव है, लेकिन फिर भी इस धनी व्यक्ति को नाखुश नहीं करना चाहिए, तो क्या करें। तो एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर ये संभव है, मैं अभी उजाला लिए प्रकाश लेके आता हूं, लैंप लेके आता हूं, मोमबत्ती लेके आता हूं। तो मोमबत्ती लेके आया और देखे देखते हैं सूरज कहां दिखता है, ऐसे आसमान की ओर मोमबत्ती को दिखाने लगा, किसी को दिखाई नहीं पड़ा सूरज। तो दूसरे ने कहा, अरे एक मोमबत्ती से क्या होगा, जो बड़ा दिया है उसको लाना चाहिए, लालटेन को लाना चाहिए। तो किसी ने बड़ा दिया लाया। तीसरे ने कहा, अरे इतने से क्या होगा, तो वो 10 ऐसे दीप लेके आया। और भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति था जो वैज्ञानिक प्रकार का व्यक्ति था, तो उसने कहा हम तो बहुत बड़ा दीप लाएंगे। तो सारे बड़े बड़े दीप लगा के आसमान की ओर लगाए उन्होंने रात में, कि कहीं सूरज दिख पाए। तो क्या ऐसे संभव है, पहले तो अमावस्या है, चांद भी नहीं, और उसकी ओर वो प्रकाश डाल रहे हैं आसमान में सूरज को देखने के लिए। फिर उनमें से एक बुद्धिमान बेचारा व्यक्ति था, उसने कहा अरे तुम लोग कितने मूर्ख हो, ऐसे कभी संभव हो सकता है। आप फिर उन्होंने धनी व्यक्ति से कहा, क्योंकि वो धनी व्यक्ति से कुछ चाहता नहीं था इसलिए वो सत्य बोल सकता था। उसने कहा देखिए भाई साहब, रात के समय आपको सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा, आप जितना भी प्रकाश क्यों न डालें, जितनी भी रोशनी आसमान में क्यों न फैलाएं, केवल सुबह ही जब सूर्यास्त होगा, अपने आप से कालक्रम में सूर्यास्त का सूर्योदय होगा, उस सूर्योदय के पश्चात ही आप सूर्य को देख पाएंगे, उसके पहले आप जितना भी कुछ ना करें यह संभव नहीं है कि आप सूर्य को देख पाओगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि अपने भौतिक बुद्धि से, भौतिक प्रयासों से, भौतिक उपायों से, मानसिक चिंतन से, अपने वैज्ञानिक संशोधन आदि से भगवान को जानने का प्रयास करना, ये ऐसे है कि जैसे वो व्यक्ति रात के समय रोशनी डाल के सूर्य को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, कभी संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति केवल भौतिक प्रयास से भगवान को जानने का प्रयास करेगा वो तो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे एक बार हम 2-4 हफ्ते पहले बता रहे थे कि एक व्यक्ति जाके एक बिजली के नीचे वो अपने कुछ ढूंढ रहा था। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोला चाबी ढूंढ रहा हूं, मेरा गिर गया। तो चाबी कहां गिर गया? वहां गिर गया। अरे वहां गिर गया चाबी, तो यहां क्यों ढूंढ रहे हो? उसने कहा यहां उजाला है ना, इसलिए इधर ढूंढ रहा हूं। तो इसी तरह से जो भौतिकवाद भौतिकतावादी लोग भगवान को ढूंढने का प्रयास करते, उनका प्रयास ऐसे होता है। सफल कैसे होगा उनका प्रयास? इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे शास्त्रों में सारा ज्ञान भगवान के बारे में दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता ये भी शास्त्र है। शास्त्र अर्थात भगवान की वाणी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सबसे अधिकृत और सही रास्ता है। जो ऐसा ज्ञान जो कि कभी गलत नहीं होगा, जो हमको कभी गुमराह नहीं करेगा। वैसे तो इस दुनिया में हम ज्ञान अनेक रास्ते तरीकों से हम प्राप्त करते हैं। एक पद्धति को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। हमारी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अपने शरीर से स्पर्श करते हैं, तो हम किसी चीज का अनुभव कर लेते हैं। तो यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। हमारे इंद्रियों के आधार पर हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, और फिर हम कोई अनुमान लगाते हैं कि हाँ हाँ ऐसे होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दोनों तरह के ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धतियां हैं, इनका अपनी जगह में महत्व है अवश्य, क्योंकि हम भक्ति में रहते हुए भी हमारे इंद्रियों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, और इसके बिना तो हम रह भी नहीं सकते। हम अनुमान भी लगाते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूं, 10 मिनट में हमारा फोन बजने लगा। हाँ, फोन बंद कर दीजिए अभी, 10 मिनट में किसी का आए भी तो बजना नहीं चाहिए क्लास में। तो यदि 10 मिनट बाद फोन आएगा, दूर से घंटी बजेगी, तो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ उसने कहा था 10 मिनट में फोन करेगा, तो हो सकता उसी का फोन है, अनुमान लगाते हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने फोन किया होगा, परंतु हमारा अनुमान ये हम किसी एक अनुभव के ऊपर आधारित करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दोनों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण अवश्य हैं, परंतु अपने आप में ये हमें पूरी तरह से निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसे अनुमान प्रमाण में हमने बताया कि घंटी तो बजी टेलीफोन की, हमने सोचा कि उस व्यक्ति ने किया होगा, लेकिन हो सकता है हम गलत थे। ठीक उसी समय में किसी तीसरे व्यक्ति ने भी किया होगा फोन, हो सकता है, हमको पता नहीं, तो गलत हो सकता है हमारा अनुमान प्रमाण। ठीक उसी तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण, जब हमें पीलिया का रोग हो जाता है तो हम गन्ने का रस पीते हैं, तो मीठा जो वस्तु है गन्ने का रस, वो भी हमें कड़वा लगने लगता है। तो एक ऐसे पीलिया का मरीज सोचेगा अरे ये तो कड़वा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष उसका स्वाद ले रहा है, परंतु गलत निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, उसका जो निष्कर्ष है वो सत्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी हम आंखों से कुछ देखते हैं, कुछ गलत दिखाई पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं बादल में हमको कुछ ऐसा कुछ चेहरा दिखाई पड़ता है, या कोई कहता है चांद में हमको दूसरे उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ता है। आंखों में हमें, आंखों हमें बहुत धोखा दे सकती हैं। एक ग्लास है, ग्लास का बना हुआ एक प्याला होता है, उसमें पानी भरिए और उसमें चम्मच रखिए, फिर साइड से देखिए चम्मच कैसे दिखता है। ऐसे लगता है कि चम्मच आधा टूटा हुआ है। चम्मच टूटा हुआ नहीं है, केवल हमारी आंखें हमको धोखा दे रही है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से हम इनके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। तो तो जब इस दुनिया के साधारण वस्तुओं के ऊपर भी हमारे इंद्रियों के ऊपर और अनुमान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर इस सृष्टि के परे जो इस सृष्टि के उत्पत्ति हैं, सृष्टि के स्रोत हैं भगवान, और जो भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, उनकी लीलाएं हैं, इन सब चीजों के बारे में हम अपने इंद्रियों से, हमारे अनुमान से कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण यहां बता रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, कि केवल गुरु शिष्य परंपरा में, जो कि भगवान श्री कृष्ण से आरंभ हुई है, ऐसे परंपरा में हमें ज्ञान स्वीकार करना चाहिए, फिर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये ज्ञान परिपूर्ण है, पूरी तरह से सत्य है, अन्यथा हम गुमराह हो सकते हैं। कोई कहेंगे कि जी हमारे भी गुरु हैं, हम भी इधर उधर से हम ज्ञान स्वीकार करते हैं, परंतु प्रभुपाद कृष्ण भगवान कहते हैं ये परंपरा मुझसे शुरू होनी चाहिए। इमं विवस्वते योगम, मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया था, और ऐसे मुझसे आरंभ होने वाली परंपरा में ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मेरा भी एक परंपरा है, तो हम कहेंगे प्रमाण बताइए, आपकी गुरु परंपरा कहां तक चलती है, कहां से शुरू होती है? यदि भगवान से शुरू नहीं होती है तो उस परंपरा को हम नहीं मान सकते। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और एक ऐसे दृष्टांत दिया। अब जब अंधे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो यह भी एक उपमा अंधे व्यक्ति के बारे में है। एक अंधा व्यक्ति अपने ससुर के घर में जा रहा था, लेकिन अंधा था इसलिए अपने आप नहीं जा पा रहा था, तो चलते चलते एक स्थान पे आया और एक व्यक्ति से उसने पूछा, अरे कोई है कोई है? तो एक व्यक्ति सामने था, उसने हाँ मैं हूं, बताओ क्या चाहिए? उसने बोला देखो मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं अपने ससुर के घर में जाना चाहता हूं जो कि इस स्थान में रहते हैं, तो मेरे को वहां ले चलो। तो वो व्यक्ति एक ग्वाल बाल था, उसने कहा कि देखो मैं मेरे गायों को चरा रहा हूं, अब मेरे इतने सारे गाय हैं, मैं तुमको लेकर जाऊंगा वहां तो मेरे गाय इधर बिखर जाएंगे, फिर उनको लाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते हैं, मेरी ये एक गाय है, ये बहुत बुद्धिमान है, इस गाय का पूंछ पकड़ लो और ये सही तुमको उधर ले जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उस अंधे व्यक्ति ने गाय के पूंछ को पकड़ लिया, परंतु आगे चलते चलते उसको लगा कि ये गाय अचानक भाग जाएगी तो मैं बीच रास्ते में अटक जाऊंगा, तो इसलिए उसने थोड़े डर के मारे गाय के पूंछ को थोड़े जोर से पकड़ लिया ताकि छूट न जाए। अब जब जोर से पकड़ लिया तो गाय डर गई, अब डर गई तो इधर उधर छलांग मार के भागने लगी। आपने देखा है ना, गाय कभी कभी छलांग मारते उछलती है तो कैसे जाती है? तो ये बेचारे अंधे व्यक्ति और भी डर गए, और भी जोर से पकड़ लिया। कभी कभी ऐसे श्री कृष्ण भगवान भी अपनी बाल लीला वृंदावन में करते थे। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, जब कोई बछड़े होते थे गोष्ठ में, नंद महाराज के गोशाला में, तो बाल कृष्ण अपने घुटनों पे या हाथों पे चलते चलते वहां पे आके किसी बछड़े का पूंछ पकड़ लेते, उसको पकड़ के उसको आधार बना के वो खड़ा होना चाहते थे। उस समय वो खड़े नहीं हो सकते थे अपने आप, अपने पैरों के बल पे खड़े होने के लिए उतनी शक्ति अभी तक नहीं थी, बहुत छोटे बच्चे थे। तो जब बछड़े ने देखा कि मेरे पूंछ खींच के ऐसे कोई कर रहा है, तो बछड़ा डर के मारे भाग जाता, और कृष्ण डर के मारे और भी जोर से पकड़ लेते। तो ऐसे बछड़ा जो है श्री कृष्ण को खींचते खींचते गौशाले में गोबर के ऊपर, गौमूत्र के ऊपर उसको खींच लेते। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस समय गोपियां बड़े आनंद से ये दृश्य देखती और उनके लिए बड़ा मनोरंजन हो जाता था। फिर श्री कृष्ण तो वो आके श्री कृष्ण को बचा लेते थे। तो खैर, लेकिन ये तो बड़ी गाय थी, और ये व्यक्ति तो कृष्ण नहीं था, साधारण मनुष्य था। तो ये गाय उछल के इधर उधर कूदे और ये व्यक्ति छोड़े ही नहीं पूंछ को, इसलिए और भी उछल के इधर उधर, और कभी कांटों से के बीच में से चली जाए, कभी पत्थरों के ऊपर से चली जाए। तो ऐसे करके बेचारे उस व्यक्ति की बुरी दशा हो गई, उसके कपड़े फट गए, उसके शरीर पे घाव आ गए। और जब तक वो अपने ससुर के घर में पहुंचा, उसकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि ससुर के घर में जो नौकर थे उन्होंने देखा उसको, सोचा ये कौन आ गया, तो उसकी पिटाई कर दी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गलत गुरु से ज्ञान स्वीकार करने से ऐसी दशा होती है। अनेक जन्मों तक हम जगह जगह इधर उधर जाते हैं परम सत्य की खोज में, वो गलत ज्ञान देते हैं और फिर गलत रास्ते में जाने से इतना कष्ट होता है। सही तरह से परम सत्य क्या है इसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो केवल ऐसे कहना कि हमारे भी गुरु हैं और हम भी गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इतना काफी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में से ही हमें जुड़ना चाहिए, तब हमें सही ज्ञान मिल सकता है, संपूर्ण ज्ञान। केवल वो उस ओछे अंध व्यक्तियों की तरह नहीं, थोड़ा सा यहां का ज्ञान, थोड़ा सा वहां का ज्ञान, ऐसे नहीं। और एक बात श्रील भक्ति सिद्धांत बताया करते थे कि एक मधुमक्खी थी, उसने देखा कि एक मधु की शीशी थी, शहद जिसमें भरा हुआ था। शहद को देखा, उसको चखने के लिए मधुमक्खी गई, लेकिन शीशा था इसलिए स्वाद नहीं ले पाई वो मधुमक्खी। बहुत प्रयास किया, उस शीशे को चाटने का प्रयास किया, चाटने से भी मधु का स्वाद नहीं आया। अंत में हैरान होकर क्या क्या मधुमक्खी ने ऊपर बोतल के जाके बैठ लिया, हाँ अभी मैंने मधु को पा लिया, पाया तो नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे तरह तरह से गलत ढंग से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्न को करने के बाद जब व्यक्ति असफल हो जाता है, तो कभी कभी वो ऐसे घोषणा करता है कि हाँ मैं सिद्ध पुरुष हो गया हूं, या मुझे ज्ञान है, या मुझे पता है भगवान के बारे में, मुझे ज्ञान है। परंतु ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष उनको अनुभव नहीं हुआ है। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान केवल निराकार हैं और हम भी भगवान हैं, हम भी वास्तव में उस निराकार में लीन हो जाएंगे, ऐसे उनकी धारणा है। तो इनके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, ये नि रविनदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्य दो नादृत युष्मदंग्रयः। वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो जिनकी बुद्धि अविशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं, अविशुद्ध बुद्धयः, प्रदूषित होती है उनकी बुद्धि, वो भगवान को नहीं मानते हैं, विमुक्त मानिना है और अपने आप को मुक्त मानते हैं वो, परंतु क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो भगवान को निराकार समझ के भगवान में लीन होना चाहते हैं, और इसके लिए आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और अपने आप को सिद्ध मानते हैं कि हम अभी मुक्त हो गए, परंतु अनादृत युष्मद अंग्रयः, क्योंकि उन्होंने हे कृष्ण आपके चरण कमलों का तिरस्कार किया है, अनादर किया है, वो आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को ही नकार रहे हैं, इसलिए पतंती अधः, उनका पतन हो जाएगा। इस तरह से केवल कहीं से भी ज्ञान स्वीकार करना, कहना कि हमारे भी गुरु हैं, ऐसे नहीं होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हमें केवल प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है, तब हमारा ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्त्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। वो कहते हैं कि परम सत्य को जानने के तीन स्तर होते हैं। एक स्तर होता है कि हम भगवान के निराकार स्वरूप को जान ले, जिसको ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म कहते हैं। दूसरा है परमात्मा। वही परम सत्य हरेक प्राणी के हृदय में विराजमान होते हैं परमात्मा के रूप में। आत्मा के साथ साथ परमात्मा हरेक हृदय में निवास करते हैं। और परम सत्य की सर्वश्रेष्ठ पहचान ये है कि वो एक व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ही अपने आप को विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की कांति ही यह निराकार ब्रह्म है। तो ये कहना कि भगवान निराकार है, ये झूठ नहीं है, परंतु अपूर्ण है। निराकार से भी श्रेष्ठ, निराकार के उद्गम, निराकार की उत्पत्ति वो भगवान श्री कृष्ण है, वो इस बात को नहीं जानते हैं। उसी तरह से थोड़े योगी जन होते हैं जो केवल परमात्मा जो हृदय में स्थित हैं उन्हीं को जानते हैं, परंतु ये भी ज्ञान गलत न होकर अपूर्ण है। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वो वास्तव में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तीनों को जान लेता है, उसका ज्ञान संपूर्ण होता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस तरह से सूर्य को समझने के भी अलग अलग स्तर होते हैं। अभी हम यहां मंदिर में बैठे हैं, हम सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य की रोशनी तो आ रही है ना, यहां देखिए सूर्य की किरणें आ रही हैं अंदर, इसलिए उजाला है मंदिर के अंदर। तो सूर्य की किरणें, किरणों को हम देख रहे हैं, और सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं होती हैं, क्योंकि वो तो सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए सूर्य की किरणों को देखकर यदि हम कहें कि यहां पे मंदिर के अंदर सूर्य है, ये गलत नहीं है, परंतु पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि सूरज का सूरज हमारे मंदिर में होता तो क्या होता यहां पे? सूरज तो वहां दूर है, सूरज की किरणें यहां आई हैं। क्योंकि सूरज की किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं, इसलिए सूर्य की किरणों में और सूर्य में अंतर नहीं भी है। तो सूर्य को जानने का एक स्तर है कि सूर्य के किरणों को जानना, परंतु हमारा ज्ञान अधूरा है। और आगे जाके हम सूरज के गोले को देख सकते हैं कि हां, ये सूर्य की किरणें वहां सूरज के गोले से उत्पन्न हो रहा है जो बहुत दूर है। तो ये सूरज की किरणों के ज्ञान से एक कदम आगे है, परंतु इससे आगे भी एक कदम हमें जाना है। क्यों? क्योंकि सूरज के गोले को चलाने वाले एक अधिष्ठाता व्यक्ति है, एक देव है, जिनको हम सूर्य देव कहते हैं। तो हमारा सूर्य का ज्ञान तब परिपूर्ण होगा जब हम सूर्य देव को भी पहचान लेंगे। तो जो सूर्य देव को जान लेता है वो सूर्य के गोले को भी जानेगा, सूर्य की किरणों को भी जानेगा। परंतु जो केवल सूरज के किरणों को जानता है उसका ज्ञान गलत न होकर अपूर्ण है। इस तरह से हमें भगवान को जानना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बार बार ऐसे ही हम सबको समझाते हैं कि श्री कृष्ण को जानना ये परम सत्य का संपूर्ण ज्ञान है, और श्री कृष्ण के चरणों में हमें भक्ति करनी चाहिए। इससे सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा श्री कृष्ण की कृपा से। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को एक दृष्टांत सुनाते हैं। वो बताते हैं कि देखो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तीन स्तर होते हैं, जिसको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध अर्थात ये जान लेना मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, साथ साथ ये भौतिक सृष्टि क्या है और मेरा भौतिक सृष्टि से संबंध क्या है, और भौतिक सृष्टि का भगवान के साथ संबंध क्या है। ये है संबंध ज्ञान। इसको प्राप्त करने के बाद जब हमें समझ में आएगा कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, तो फिर अभिधेय के स्तर में आते हैं। हमें बताया जाता है कि इस संबंध के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर ऐसे भक्ति करते करते फल क्या मिलेगा, प्रयोजन, वो है कृष्ण प्रेम। भगवान से हम प्रेम करने लगेंगे, ये सच्चा प्रेम है और ये हमारे जीवन का ध्येय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दृष्टांत दिया कि एक बार एक ज्योतिष था जिसका नाम था सर्वज्ञ। वो एक गरीब व्यक्ति के घर में गया और कहने लगा कि तुम बहुत दुखी लगते हो, तो तुम्हारे दुख का निवारण मैं कर दूंगा, तुम्हारे दुख का कारण मैं बताऊंगा और दुख से कैसे मुक्त होना है ये भी मैं बताऊंगा। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है और क्योंकि उन्होंने देह त्याग दिया घर से कहीं दूर, इसलिए वो तुमको बता नहीं पाए कि उनके पास एक बहुत बड़ा धन कहीं है, वो रखा हुआ है। तो ये धन कहां रखा है ये खोज निकालना तुम्हारा कर्तव्य है। अभी केवल उस व्यक्ति को उतना बताया जाए कि तुम्हारे पिता के पास बहुत बड़ा धन था जो वास्तव में तुम्हारी संपत्ति है, इतना कह के क्या काफी हो जाएगा? क्यों नहीं काफी होगा? उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा ना कि वो धन कहां है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है उस धन को। केवल इतना बताने से कि तुम्हारे पिता के पास बहुत धन है, उन्होंने कहीं छुपा के रखा है, बस उतना ही बोल के क्या होगा? तो उस ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे पिता ने ये धन छुपाया है एक जगह और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये ज्ञान, ये धन तुम्हें कहां मिलेगा। तुम यदि घर के पश्चिम भाग में जाओगे और वहां खोजने का प्रयास करोगे तो वहां ये बड़े बड़े कीटाणु हैं, बड़े बड़े मच्छर की तरह हैं, ये तुमको बहुत काटेंगे जोर से, तो वहां तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम जब दक्षिण भाग में आओगे तो उस समय वहां भी तुम खुदाई करोगे तो तुमको नहीं मिल पाएगा धन, क्योंकि वहां बहुत एक भूत है, वो भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा, तुमको तरह तरह का कष्ट देगा। उत्तर के भाग में जाओगे तो वहां भी एक बड़ा काला सांप है, तुमको डस लेगा और तुमको निगल भी लेगा, इसलिए वहां भी तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। परंतु तुम पूर्व भाग में जाओगे, थोड़ा सा खुदाई करो, बस तुमको धन मिल जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने इसका तात्पर्य समझाया कि पश्चिम भाग के जो कीड़े आदि हैं वो कर्म कांड के मार्ग के समान है। कर्म कांड का मतलब है कि हम सकाम कर्म करते हैं, हो सकता है हम देवी देवताओं के पास भी जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे हमें ये फल मिले। तो ऐसे भौतिक लालसा से, इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से भोग प्रवृत्ति हमको इस रास्ते में ले जाती है कि हम तरह तरह की सुविधाएं और भोग चाहते हैं संसार में, और कई बार पाप भी करते हैं। तो ऐसे सकाम कर्म के पद को स्वीकार करने से बाद में हमको ये कर्मों के फल स्वीकार करने पड़ते हैं जो दुख के रूप में आते हैं। इसलिए वो जो कीटाणु आदि है वो हमको डसने के बराबर है, हमको बहुत कष्ट देते हैं। तो कर्म कांड के पथ को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा रास्ता है ज्ञान मार्ग। मानसिक चिंतन के द्वारा हम केवल भगवान के निराकार स्वरूप को जानना चाहते हैं, जो भी बहुत कष्टदायक है। जैसे भूत सवार हो जाता है किसी के ऊपर तो वैसे ही व्यक्ति को कष्ट होता है। और तीसरा जो दिशा है, उत्तर का दिशा, उत्तर दिशा वो है जहां एक काला सांप है। जैसे योग, अष्टांग योग की पद्धति है, योगी जन बैठते हैं ध्यान में हिमालय में जाके, वो भी भगवान से लीन होना चाहते हैं, तो इससे भी अपना अस्तित्व नष्ट करना चाहते हैं, तो इससे भी कोई लाभ नहीं होता। परंतु पूर्व दिशा में ये भक्ति मार्ग है। थोड़ी सी भक्ति करने से, चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। केवल भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चाश्मि तत्पतः ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, कि केवल भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूं, मैं प्राप्त किया जा सकता हूं हे अर्जुन। ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, और जब तुम ऐसे भक्ति करके मुझे जान जाओगे फिर तुम मेरे धाम में मेरे पास लौट के आ पाओगे। तो इस भक्ति पथ को स्वीकार करने से हमें संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और ये भक्ति करना ही ज्ञान की परिपूर्णता है। ज्ञान प्राप्त करने से हमें भक्ति करनी चाहिए, और यदि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें ज्ञान नहीं मिला है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विताः। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ये भौतिक सृष्टि, ये आध्यात्मिक सृष्टि का उद्गम मैं ही हूं, और जो इस बात को भली भांति जान लेता है वो पूरी भावना से, भक्ति भावना से मेरी सेवा में रत रह जाता है। तो ये ज्ञान की परिपूर्णता है जो कि हमें गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होती है। परंतु ये ज्ञान इतना सरल होने के कारण भी लोग स्वीकार नहीं करते, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि इस ज्ञान की सरलता ही लोगों को भ्रमित कर देती है, क्योंकि लोग सरल नहीं होते हैं, तो उनको कुछ सरल बात बताई जाती है तो वो सोचते हैं कि ये सही नहीं हो सकता, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतने परिश्रम करने के बाद भगवान प्राप्त होते हैं केवल नाम लेने से हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, वो गुमराह करते हैं। हरिदास ठाकुर नाम के बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे वो, हालांकि उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, फिर भी बचपन से ही वो कृष्ण के भक्त थे, निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण किया करते थे। चलते चलते एक बार वो ऐसे गांव में आए जहां दो बहुत धनी व्यक्ति थे जिनका नाम था हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार। तो उन्होंने इस संत को स्वागत किया घर में और एक सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें कि उन्होंने गांव के सारे प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण दिया था। तो हरिदास ठाकुर वहां आए, उनकी प्रसिद्धि उनके पहले वहां पहुंच चुकी थी, तो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि कितने महान हैं ये हरिदास ठाकुर, ये नामाचार्य कहलाते हैं, निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। तो किसी ने कहा, हां कृष्ण नाम, इसकी महिमा तो अपार है, कृष्ण नाम लेने से हमें सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। किसी ने कहा, कृष्ण नाम लेने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। किसी ने कहा, कृष्ण नाम लेने से हम नरक से भी मुक्त हो सकते हैं। किसी ने कहा, कृष्ण नाम लेने से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, कृष्ण नाम लेने का सही जो उद्देश्य है या सही प्रयोजन है या सही लाभ है, वो केवल ये नहीं है कि हम पापों से मुक्त होंगे या हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से हमें मिल ही जाएगा, परंतु कृष्ण नाम को लेने का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। जिस तरह से सूर्योदय होने के पहले ही जब सूर्य की किरणें थोड़े बहुत आ जाते हैं तो जो कोहरा होता है या अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है, और जब सूरज का पूर्ण उदय हो जाता है उस समय तो पूरी रोशनी फैल जाती है। उसी तरह से कृष्ण नाम का उदय होने से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। लेकिन जहां तक ये मुक्ति आदि की बात है तो ये तो कृष्ण नाम के आभास मात्र से ही प्राप्त हो सकता है। कृष्ण नाम की महिमा ये है, क्योंकि श्री कृष्ण से उनका नाम अभिन्न है। तो वहां एक व्यक्ति बैठे थे जिनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और परंतु वो कृष्ण भक्त नहीं थे। उनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो गोपाल चक्रवर्ती को बड़ा घमंड था अपने ऊंचे कुल में जन्म का। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम देखते हैं और सुनते हैं कि इतने बड़े बड़े योगी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, जो इतने वर्षों से तपस्या करते हैं फिर भी वो मुक्ति नहीं प्राप्त करते, बल्कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। और ये महाशय कह रहे हैं कि एक कृष्ण नाम से हमें मुक्ति मिल जाएगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य है, ये नहीं हो सकता है। बल्कि यदि ये जो कह रहे हैं वो गलत है तो उनका नाम गिर जाए। जब उन्होंने ऐसे अपराध किया हरिदास ठाकुर के प्रति तो सारे लोग वहां हैरान हो गए, और हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार ने उनको घर से बाहर कर दिया। तुम यहां क्यों आए हमारे घर में हमारे अतिथियों का अपमान करने के लिए, और ये भी इतने बड़े संत हैं, उसको तो बाहर निकाल दिया। परंतु थोड़े ही समय बाद उसको ही कुष्ठ रोग हो गया और उसका ही नाक गिर गया, क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। तो हरिदास ठाकुर ने जो कहा था वो सत्य था कि कृष्ण नाम ही सब कुछ होता है। केवल कृष्ण का नाम लेने से हमें संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसे सरल बात बताने से लोग कहते हैं ये लोग गुमराह कर रहे हैं सबको। कई बार ऐसे होता है कि जब लोग हरे कृष्ण आंदोलन में आते हैं, मंदिर में आने लगते हैं, उनको भक्तों का संपर्क होता है और वो जप आदि करना शुरू करते हैं, प्याज लहसुन खाना छोड़ देते हैं, या इधर उधर होटलों में जाना या सिनेमा देखना बंद कर देते हैं, तो उनके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं इत्यादि, वो उनकी निंदा करने लगते हैं। अरे ये कैसी भक्ति है, आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं होता है। हर एक भक्त को शायद अनुभव है इस बात का कि लोग अपनी अपनी धारणा बताना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि उस मंदिर में सब गलत सिखाया जाता है। तो ऐसे लोग सरल चीज को गलत समझते हैं, क्योंकि उन्होंने परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किया होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमको बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल उनकी परंपरा से हमको जुड़ जाना है। ऐसे जुड़ जाने से सारे जीवन की समसिद्धि हमको प्राप्त हो सकती है। इतना आसान है ये पथ, और ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? हाँ, माइक है वहां, क्या माइक जा सकता है पीछे? हाथ ऊपर कीजिए जिनको प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न ये है कि ब्रह्मवादी और मायावादी में कोई अंतर है क्या? सूक्ष्म अंतर बताया जा सकता है कि ब्रह्मवादी वो होते हैं जो ईर्ष्या नहीं करते हैं भगवान से या भगवान के व्यक्तित्व से। यहां तक भी हो सकता है कि उनको पता है या उनको विरोध नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति है, परंतु उनका स्वाभाविक आकर्षण निराकार ब्रह्मज्योति से है, इसलिए वो ब्रह्मज्योति की उपासना करते हैं। जैसे चतुष कुमार थे, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना था भगवान के बारे में, वो जानते थे कि भगवान एक व्यक्ति हैं, फिर भी उनका आकर्षण निराकार के प्रति था। केवल वैकुंठ के द्वार पे जाके भगवान का दर्शन करके उनके चरण कमलों में अर्पित जो तुलसी मंजरी और दल हैं, उनका सुगंध लेकर ही उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वो भक्त बन गए। तो वो पहले ब्रह्मवादी थे। मायावादी वो होते हैं जो भगवान के व्यक्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत भी मिथ्या है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, तो प्रश्न है कि यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कि परंपरा नष्ट हो चुका है परंतु वास्तव नहीं हो गया है, इसलिए यहाँ पे अनुमान में कहते हैं अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है, ऐसे लगता है कि वो नष्ट हो गया है। तो जैसे हमने बताया कभी राजऋषियों की परंपरा खत्म हो भी जाती है, अन्य ऋषियों की परंपरा तो रहती है। तो भगवान बड़े कृपालु है, वो हमेशा ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं ज्ञान पहुंचाने के लिए उन लोगों तक जो वास्तव में उनको प्राप्त करना चाहते हैं। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कोइलो कृष्ण वेद पुराण। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीव को अपने आप में कोई क्षमता नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के बारे में, परंतु जीवों के ऊपर भगवान कृष्ण ने कृपा की है और उन्होंने वेद पुराण आदि ऐसे शास्त्र दिए हैं जिनके द्वारा भगवान के बारे में ज्ञान हम सबको पहुंच सके। तो भगवान ऐसी हमेशा कोई व्यवस्था रखते हैं, कोई ऐसी परंपरा या ऐसे व्यक्ति हमेशा रहेंगे जो हमको ये कृष्ण ज्ञान दे सकेंगे, इसलिए वास्तव में कभी ये ज्ञान नष्ट नहीं होता है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, इस माइक।
हरे कृष्ण महाराज।
हरे कृष्ण।
जो अभी एवं परंपरा प्राप्तम जो बताया गया है तो प्रभुपाद ने जो लिखा हुआ है इसमें जो उसमें भी श्लोक आया है, तो बाकी के जो भगवद गीता लिखा हुआ है जैसे कि बहुत लोगों ने हमारे स्वतंत्र सैनिक जो है ऐसा बहुत लोग लिखा है तो उसमें भी ये श्लोक आता है, फिर भी वो ऐसा मतलब परंपरा से जो आया है उसको सरेंडर नहीं जाते प्रभु जी, तो दूसरी तरफ ऐसा वो उनका आकर्षण रहता है, ऐसा क्यों होता है?
हाँ, क्योंकि वो अपने ढंग से ही मानसिक चिंतन से भगवान के संदेश को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे भगवद गीता को मैंने भगवद गीता यथारूप कहा है, जैसे है वैसे। ये मेरी भगवद गीता नहीं है, ये कृष्ण की गीता है, इसलिए इसका नाम है भगवद गीता। तो भगवान के वाणी को हमें बदलना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कई लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी को लेकर कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल देते हैं, परंतु फिर ये भगवद गीता नहीं रह जाती है, वो उस व्यक्ति की गीता हो जाती है जिस व्यक्ति ने टीका लिखी है। तो फिर प्रभुपाद कहते थे कि उनको भगवद गीता नाम नहीं देना चाहिए उस ग्रंथ को, अपना नाम लिखे उनकी गीता लिखनी चाहिए। फिर कितने लोग हैं जो उस किताब को खरीदेंगे? तो केवल भगवद गीता का नाम लेकर अपनी गीता लोगों को सुनाना ये ठीक नहीं है। इसलिए सही क्या है और नहीं है, इसके लिए सही परंपरा चाहिए। जैसा है वैसे भगवान के वाणी को हमें स्वीकार करना है। यदि भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, तो हमें मानना चाहिए कि कृष्ण से उत्पन्न होती है, ना कि निराकार से उत्पन्न हो रही है। जब भगवान अहम कहते हैं मैं, तो बोलने वाले कृष्ण हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि कृष्ण ही सृष्टि के स्रोत हैं। तो कई टीकाकार ऐसे कहते हैं नहीं नहीं, अहम का मतलब है कि उनके भीतर जो निराकार है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसे होता तो भगवान ऐसे कहते, इसलिए हमें जैसे है वैसे भगवान की वाणी को स्वीकार करना चाहिए, फिर हमें सही ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे। अच्छा, अंत में यहाँ एक प्रश्न है कि तुलसी महारानी की महिमा को सुनने के बाद क्या हमें ये समझना चाहिए कि उनका स्थान राधा रानी से श्रेष्ठ है? नहीं, राधा रानी से श्रेष्ठ नहीं है। तुलसी महारानी वास्तव में वृंदा देवी की विस्तार है और वृंदा देवी भी राधा रानी की विस्तार है। राधा रानी से श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण।